जगमग ज्योति हूँ मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ।
ओम शांति। आज आत्माभिमानी दिवस है और उसी विषय को लेकर के शिलू बहन जी हमें क्लास कराएगी। सभी ध्यान से सुनना। ऐसे तो कल थोड़ा सा परिचय तो शिलू दीदी का मिला, फिर भी आज थोड़ा और परिचय भी लेंगे और बहुत बहुत दिल से फिर से आज की इस भट्टी की क्लास में हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप करीब 55 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे हो। बॉम्बे आपका स्थान है, अलौकिक जन्म स्थान, और करीब 46 साल से बाबा की यज्ञ सेवा में समर्पित हो। शुरू में मॉरिशियस और अफ्रीका आदि की सेवा के लिए यहां से आप गए थे। मॉरिशियस का सेंटर करीब 40 साल पहले 75 में आपने ही स्थापन किया। आज ही शायद मॉरिशियस को याद किया था कि 40 साल हुए हैं, पुराना सेंटर है, लेकिन आपका ही सेवा का प्रदान वहां विशेष रहा। शुरुआत में आपने ही स्थापना की, बाद में यहां मधुवन में भी विदेशियों की सेवाएं शुरू हुई थी और शिविर भी, राजयोग शिविर भी चलते थे। तो दादी जी ने आपको यहां की सेवा में, जहां सब आते हैं, आप पहले वहां जाकर सेवा करते थे, अभी आज क्या है, सभी विदेश से, अलग अलग देशों से काफी भाई बहने यहाँ आते हैं, तो सबकी सेवा का चांस बाबा ने आपको इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारा माउंट आबू का है या शांतिवन, अभी तो वहां भी बहुत सेवाएं हो रही है ज्ञान सरोवर में, सभी जगह आए हुए विदेशियों की विशेष सेवा के लिए आप निमित्त हो। और शायद पुराने भाई बहने हैं जानते होंगे कि शुरू शुरू में टीवी में वो भी पहल आपसे हुई थी, जैसे जी टीवी में जागरण के प्रोग्राम में आपकी सीरीज चलती थी, कई वैल्यूज पर आपने उसमें विभाषण किए थे और सब सुनते थे। और उन दिनों में जब आपका परिचय दिया जाता था तो टीवी का बहुत महत्व था और सब को कहते थे अभी वो आपके सन्मुख आ रहे हैं जिन्हों को आप टीवी में देखते थे। तो उन दिनों में टीवी सेवा का बड़ा महत्व था, आज भी है, लेकिन वो शुरुआत थी। तो सबसे पहले आपने ही बाबा का संदेश देने का टीवी में चालू किया था। और जी टीवी है, फिर सोनी टीवी है, ऐसे आस्था चैनल आदि में भी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम रहे। और आजकल तो आप देखते हैं पीस ऑफ माइंड में भी हम आपको बहुत सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज सन्मुख सुनने का मौका मिला। सन्मुख में क्या है, सन्मुख में बोल के साथ, शब्दों के साथ, वाइब्रेशन, भावनाएं, ये भी हमें लाभ मिलता है। तो ऐसे विशेष बाबा के प्रखर वक्ता कहो, अथवा बाबा ब्रह्मा है और उसकी बेटी सरस्वती, ऐसे गाई हुई है, तो एक सरस्वती नहीं, ऐसे अनेकों सरस्वती को ब्रह्मा ने पैदा किया। तो जो भी सब बहने ज्ञान सुनाने वाली है, सबको ही हम ज्ञान की देवी सरस्वती कहेंगे, लेकिन आप विशेष, कहते आपके जीवा पर सरस्वती विराजमान है, बहुत मीठी वाणी से, बहुत विस्तार से टॉपिक पर आप स्पष्ट और बहुत अच्छे वक्ता हो। और ऐसा वक्ता चाहे नयों के लिए हो, चाहे पुराने भाई बहनों के लिए क्लासेस आदि हो, सब में आप माहिर हो, इसलिए अभी वर्तमान समय आप टीचर्स ट्रेनिंग में या भट्टियों में या राजयोग शिविर हो या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि हो, सब में आप जरूर सेवाएं देते हो। आपको वो बाबा की गॉडली गिफ्ट है ना, उससे बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है। और खास हमारी 18 विंग है, उसमें एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हो और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा कहे, ऐसे पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अंदर बाहर दोनों ऐसे ही कहेंगे, और अपनी मधुर वाणी से और आप अपने कार्यों से अपने जीवन व्यवहार से अनेकों को प्रेरणा देने वाले निमित्त हो। तो आज ऐसी विशेष आत्मा हमें आत्माभिमानी बनने की जो बातें हैं आत्मिक स्थिति की वो सुनाएंगे। हम सुनते सुनते भी उस स्थिति में रहने का अभ्यास भी करेंगे। तो आदरणीय शिलू बहन जी अभी आपको क्लास कराएगी।
ओम शांति। मधुबन में आते हैं बाबा मम्मा की गद्दी हम सब अनुभव करते हैं और हम उनके वारिस बच्चे हैं, बाप समान बनने वाले। तो मम्मा बाबा ने तो, हमारी बड़ी बड़ी दादियों ने तो अपनी अवस्था बहुत ऊंची बनाई और हमें भी यह प्रेरणा देते रहते हैं कि कैसे तुम्हें अपनी अवस्था ऊंची बनानी है। जैसे वे बाप समान बने, हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हम भी बाप समान बने। तो बाप समान तब बन सकेंगे जब पहला कदम, जो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आप ये देह नहीं हो, आत्मा हो। तो यह आत्म अभिमानी स्थिति सबसे पहला पाठ है, लेकिन ये इतना विस्तार का पाठ है कि यह पहला पाठ भी है तो अंतिम पाठ भी है। केवल पहला पाठ किया तो बस और आगे बढ़ना है, ये तो ठीक, लेकिन ये पहला पाठ इतना इम्पोर्टेंट है जो आगे तब बढ़ सकेंगे जब पहला पाठ एकदम पक्का होगा। और ऐसी स्थिति में ये अंतिम पाठ भी है, क्योंकि अंत में भी हमें उसी आत्मिक स्थिति का अनुभव करना होगा। उसी स्थिति में बाबा के घर जाना होगा। आज भी बाबा की अव्यक्त मुरली में था ना, मिट्टी थोड़ी ले जाएंगे, ये चोला तो ले नहीं जाएंगे, सूक्ष्म वतन में भी नहीं ले जाएंगे, मूल वतन में तो ले ही नहीं जाएंगे। इसलिए अगर बाबा को साथी बनाना है तो क्या करना होगा? बाप दादा ने इस समय चमकीली ड्रेस पहनी है, आज बाबा ने कहा चमकीली ड्रेस, फरिश्ता की ड्रेस। पर फरिश्ता की ड्रेस भी तब पहन सकेंगे जब फरिश्ते समान होंगे। और फरिश्ता किसको कहा जाता है? जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जिसके पैर धरती पर नहीं अर्थात मिट्टी में नहीं, जो पूरा ही देही अभिमानी है। फरिश्तों के लिए कहते हैं उनके पैर धरती पर तो नहीं होते, पर साथ साथ उनकी परछाई भी नहीं पड़ती है, परछाई नहीं होती है फरिश्तों को, हड्डी मांस वालों को तो परछाई होगी, पर फरिश्तों को परछाई नहीं होगी, क्योंकि है ही लाइट, तो लाइट में ही है तो परछाई कहाँ से आएगी। इसीलिए न धरती पर पैर है न परछाई, और परछाई किसको कहते हैं? परछाई माना इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं। जैसे परछाई के लिए कहते हैं ना कि आप परछाई के पीछे पीछे जाएंगे तो परछाई कभी भी आपके हाथ आने वाली नहीं है। आप पकड़ने की कोशिश करो परछाई को, हाथ में आएगी और ही लंबी लंबी होती जाएगी। अगर आपके आगे है और लाइट प्रकाश तो पीछे है, वो प्रकाश तो स्थिर है और परछाई तो अस्थिर है। तो आप आगे जा रहे हो और लेकिन परछाई आपके आगे है, प्रकाश को आप पीछे छोड़ रहे हो, और जैसे प्रकाश के को पीछे छोड़ते हुए परछाई की ओर जाएंगे, आपकी परछाई लंबी लंबी होती जाएगी। इसीलिए कहा गया है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। न वो प्रकाश हाथ आएगा न वो परछाई हाथ आएगी। तो परछाई क्या है? हमारी इच्छाएं। जितना जितना हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो, तो एक इच्छा क्या पूरी हुई, 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाती है। वो दिखाते ना, एक सन्यासी की कहानी आती है कि वो तो सन्यासी था और दूर से उन्हें भोजन तो वो बनाते नहीं थे, कर्म सन्यासी कहलाते थे, तो लोग दूर दूर से वहाँ पहुँच कर उनको भोजन देते थे, दूध देने आते थे, पर वो अधिकतर दूध ही पीता था और कुछ नहीं पीता था। तो बहुत लोग दूध देकर जाते थे, तो किसी ने उसको कहा कि स्वामी जी, हाँ इतना दूर दूर से लोग दूध देने आते हैं, तो आप गाय क्यों नहीं पाल लेते हो? एक गाय पाल लो, खत्म हो जाएगी सारी समस्या। तो एक गाय भी ले आया साथ में, वक्खो भाई ये दूध निकाल देगी, अब दूध गाय को संभाले कौन? मिसाल देते ना, फिर गाय को संभालने के लिए फिर एक किसी स्त्री को रखा। अब स्त्री को रखा तो स्त्री फिर क्या हुआ, हाँ धीरे धीरे कहानी बढ़ते बढ़ते उसे शादी भी हो गई, उसे बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। मानो कहाँ सन्यासी एक गाय पाल रखनी थी और क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बाबा भी कहते ये इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, क्योंकि आत्मा को तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा का खजाना कौन सा है? वो तो बाप दे रहे हैं। आत्मा की इच्छा किसमें है? ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये आत्मा का खजाना है और वो तो बाप दे ही रहे हैं। और ये ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना अगर होगा तो वो स्थूल भी आ जाएगा, वो उसके पीछे पीछे आएगा। इसीलिए किसी ने कहा कि एक कोई बता रहा था कि देखो बिल गेट्स ने कोई लक्ष्मी का पूजन नहीं किया धन कमाने के लिए, और आइंस्टाइन ने कोई सरस्वती की पूजा नहीं की बुद्धि, उनको साइंटिस्ट की बुद्धि दिलाने के लिए। तो सरस्वती की पूजा करने से केवल बुद्धि नहीं आएगी, या लक्ष्मी की पूजा करने से धन नहीं आएगा, इसमें तो पहले तो बुद्धि इतनी शक्तिशाली चाहिए जो इतना आगे बढ़ सके, इतना धन भी कमा सके और वैज्ञानिक बुद्धि भी बन सके, आविष्कार कर सके। तो बुद्धि का काम, तो बुद्धि तो भगवान से मांगते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मांगते हैं। और बुद्धि भगवान कैसे देता है? ज्ञान गुण और शक्तियां प्रदान करके, ये खजाना देता है। और उसके लिए बाबा कहता है श्रीमत पर चलो, पढ़ाई करो, स्टूडेंट बन के पढ़ो, तो जितना तुम स्टूडेंट बन के ये पढ़ाई करेंगे, ज्ञान आता जाएगा, गुण भी आते जाएंगे और खजाने सब भरपूर होते जाएंगे और आत्मा उसके साथ ही जाएंगी। बाकी और किसी की तमन्ना मत रखो, वो सब आएगा। वो तो परछाई की तरह, अभी तो हड्डी मांस में है ना, तो परछाई आपकी कहाँ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, रोशनी की तरफ मुंह दो। अगर रोशनी की तरफ मुख किया तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी, और कैसे आएगी, छोटी छोटी होती जाएगी। और जैसे ही रोशनी के पास पहुंचे, हाँ, क्या होगा, परछाई आप में समा जाएगी, क्योंकि आप पूरी रोशनी से ढक जाएंगे। तो परछाई कहाँ से आई, तो परछाई माना अंधेरा, अंधेरा माना इच्छाएं। तो बाबा ने क्या कहा, इच्छाओं के पीछे मत जाओ, पर अच्छा बनो तो प्रत्यक्ष फल भी तुरंत मिलेगा। शिव बाबा के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर अनुभव होंगे। लेकिन इन सब का आधार क्या है, वो ज्ञान गुण शक्तियां भी बुद्धि में तब बैठे, उन खजानों से आत्मा भरपूर तब बने जब आत्म अभिमानी स्थिति हो। अगर देह अभिमान है और ये मिट्टी के आकर्षण में है, तो फिर तो इनसे भरपूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी। बुद्धि, दिव्य बुद्धि बाबा ने सबसे पहली सौगात हम ब्राह्मणों को दी है। भगवान से सबसे पहले यही मांगते हैं, हे ईश्वर दिव्य, हे ईश्वर सद्बुद्धि दो। माता पिता अपने बच्चों के लिए भी पहले पहले क्या मांगेंगे, हाँ, बच्चों को सद्बुद्धि दो। तो भगवान स्वयं सद्बुद्धि की सौगात लेकर आते हैं। और कैसे मिलती है सद्बुद्धि की ये गिफ्ट, आत्म अभिमानी स्थिति से। इसलिए आत्मा समझो, आत्मा समझो, शुरू शुरू में यही पहला पाठ था। लेकिन उस समय बाबा की बहुत मदद थी, इसलिए जब भी बाबा किसी को देखते थे वो ध्यान में चला जाता था, और वो कि बाबा को देखता था तो बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखता था, मतलब एक प्रभु की लीला चल रही थी शुरू में। तो इसीलिए बहुत आत्माएं आकर्षित होकर के आई और यज्ञ बना, और एक सेकंड में आत्मा इस आत्मिक स्थिति बन जाती थी। माया के आकर्षणों से तो बिल्कुल ही दूर थे, इसीलिए 14 साल बिल्कुल ऐसी तपस्या में वो रह सके। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं मनोहर दादी के साथ बहुत रही। दादी जी मधुबन में रहते थे, मनोहर दादी, पुरानों ने देखा होगा, जिन्होंने मनोहर दादी को देखा हाथ उठाओ, बहुतों ने देखा है। जब 20 साल के पुराने होंगे, उन्होंने दादी तो कब शरीर छोड़ा, 97 में, 96 कुछ ऐसा था। हाँ, अभी अभी 2006, हाँ 2006 में, हाँ सॉरी 2000, चंद्रमणि दादी ने वो तब शरीर छोड़ा। तो मनोहर दादी के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला। ज्ञान चंद्रमणि दादी के बाद मनोहर दादी जो पांडव भवन में रहती थी वो ज्ञान सरोवर में गई, पहले चंद्रमणि दादी थी। तो मनोहर दादी बाबा की बहुत कहानियां सुनाया करती थी, सब बहुत मजा आता था। और मैं दादी से पूछ करती थी, दादी ऐसी ये कैसे था, ये कैसे था, और बहुत प्यार से सुनाती थी। तो मैंने दादी से पूछा एक दिन, दादी आपने 14 साल कैसे बिताए, 14 साल कोई छोटी कोई गिनती थोड़ी है, एक साल भी बहुत बड़ी बात है, 14 साल आपने कैसे बिताए। तो दादी ने बड़ा वंडरफुल जवाब दिया, दादी ने कहा 14 साल तुमको लगा ही नहीं, सीधी बात, लगा ही नहीं, हमें तो ऐसे लगा जैसे वो 14 महीने थे या 14 हफ्ते थे, 14 दिन थे, मैंने कहा अच्छा तो क्या आपने किया ये 14 साल, ऐसे कैसे लगा? तो कहा बस हम लोग तो बस ध्यान में जा रहते थे, साक्षात्कार ही होते रहते थे, क्योंकि दुनिया का तो मुंह देखना नहीं था, वैसे भी नहीं देखते थे, कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ सवेरे कराची में क्लिफ्टन बीच थी वहां जाते थे और वह एक्सरसाइज थोड़ी करते थे और तपस्या करते थे, वापस आ जाते थे, फिर घर के तो अंदर ही थे। और कई ध्यान में जाती थी बहनें, जो ध्यान में जाती थी वो फिर वो उसका ड्रामा करती थी, तो वो ड्रामा हम लोग करते थे, तो सारा दिन ड्रामा की रिहर्सल, ड्रामा करना और वो ध्यान में जाना, शहजादियां आती थी, वो इतनी रौनक थी, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं। और आपको मालूम है उन्हीं 14 सालों में बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक 6 साल तक ये विश्व युद्ध चला, और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्त की नदियां बही, बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया वो। लेकिन ये बहनें तो बेफिक्र बादशाह, इनको सेक भी नहीं लगा। तो किस आधार पर था? क्योंकि ये आत्मा अभिमानी स्थिति में रहती थी, तो किसी का मोह नहीं, किसी की चिंता नहीं, और दुनिया में तो क्या चिंताएं लगी पड़ी थी। तो देखो बाबा ने कैसे इनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, क्योंकि इतनी शक्ति उनमें किस आधार पर थी बस, और इतना ज्ञान भी नहीं था। ऐसे नहीं कि अभी जितना ज्ञान है उतना उस समय था, वो भी नहीं था, बस खुशी और लगता था इतनी प्राप्ति और साक्षात्कार उसकी धुन थी। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत के समय वही फिर स्थिति होगी, लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर यही होगा कि अब अंत में जो होगा वो हरेक की अपनी अपनी रिजल्ट आउट होगी। जैसे परीक्षा पूरी हो जाती है, रिजल्ट आउट होता है, तो हरे को अपना अपना पता चलता है ना, मैं कहाँ हूँ और दूसरे कहाँ हैं, सबका पता चलता है। अब उस समय तो सब उसी नशे में थे, कई बार शहजादियाँ आती थी और वो शहजादी तो उनको तो सतयुगी दुनिया का अनुभव, पर ये सतयुग और संगम का दोनों का जैसे मिश्रण संस्कार, जैसे बाबा की करामात थी, जो भी करावे। तो जब वो देखती थी तो वो सतयुग का संस्कार इमर्ज होता था और किसी को कहती थी कांता, कांता, कांता माना दासी, कांता दासी को कहते थे। तो वो बहन तो अपने को तो बहुत बड़ा समझती थी और उसको कांता बुला रहे हैं, तो उसको बहुत लगता था मैं कांता बनूंगी क्या, मैं दासी बनूंगी क्या। तो बाबा उनको कहते थे नहीं बच्ची, तुम दासी बनोगी ये जरूरी नहीं है, पर इस समय वो इस नशे में है, तो क्योंकि वो शहजादी है सतियों की। पर फिर धीरे धीरे बाबा ने ये सब कैसे आगे चल के जब भारत में आए तो ये सब बातें बाबा ने बंद करा दी। नहीं तो 15 दिन तक शहजादी होती थी, इतना खाती थी, इतना मानो सोती भी बहुत कम थी, खाती भी बहुत कम थी, और 15 दिन शहजादी वो संदेशियों के तन में रहती थी। बहुत सुंदर बातें हमारी मनोहर दादी बताती थी। तो परंतु उस समय सबका एक जैसा नशा था, पर अंत के समय क्या होगा? अंत के समय हरेक की रिजल्ट आउट होगी। उस समय बाबा की बहुत मदद थी, पर अंत में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अंत में हम ये कहेंगे बाबा मदद करो, हाँ? आज भी बाबा ने कहा ना, विश्व के मालिक के बच्चे और वो मांगे, ये तो किसका नाम बदनाम, बाबा का नाम बदनाम। लेकिन उस समय मांगने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू लेट। जैसे एग्जामिनेशन पेपर का समय है और वो हमारा ही स्कूल टीचर, हमारा ही क्लास टीचर, वो एग्जामिनर बन गया मानो, अब उस एग्जामिनर को कोई अधिकार नहीं है कि अपने स्टूडेंट को मदद करे जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख रहे हैं। वो नहीं मदद कर सकता, अगर चाहे तो भी मदद कर सकता है। दया आ जाए अपने स्टूडेंट पर कि मैं मदद थोड़ा सा करूं, लेकिन अगर करेगा तो वो टीचर को भी निकाल देंगे, उसको भी नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि अलाउड नहीं है। तो उस समय शिव बाबा बाप के रूप में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? हाँ, धर्मराज के रूप में होगा। और वंडरफुल बात तो ये है, देखो वो जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वो एग्जामिनेशन का तो अनाउंसमेंट पहले से हो जाता है कि फलाने दिन, फलानी तारीख, फलाने समय आपकी परीक्षा ली जाएगी। हाँ, ऐसे सब डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं होता है। बाकी सब डिक्लेयर हो जाता है, पर वो क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो पता नहीं होता है। और अगर बाय चांस लीक भी हो गया तो सारा क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर देते हैं, ये लीक कैसे हुआ, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है। अब यहाँ इसका ऑपोजिट है, पेपर लीक है, पेपर आउट है, पर वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा ये पता नहीं। और वहाँ दुनिया में कहाँ होगा, कब होगा, कि ये सब पता, किस समय होगा, ये बाकी कुछ पता नहीं, पर पेपर आउट है। पेपर कौन सा है, कौन सा पेपर होगा? हाँ जी, पेपर कौन सा होगा? एक सेकंड में सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, एक सेकंड में देश है देह के सब संबंध एक सेकंड में त्याग सको, बुद्धि कहीं न जाए, अपनी देह में भी न जाए, एक सेकंड में आत्मा उड़ जाए, कहीं बुद्धि यहाँ वहां न गई न जाए। अगर वो गई माना फेल। अब वो परीक्षा की घड़ी कब आएगी जो जाना होगा, और उस समय वो एक सेकंड की परीक्षा होगी, क्योंकि सेकंड की परीक्षा होती है, पर वो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कितने बजे होगी, कौन से दिन होगी, कुछ पता नहीं। पर ये जरूर आउट है कि एक सेकंड में न्यारा बनना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है, पेपर आउट है। और उस एक क्वेश्चन के एक सेकंड के आंसर के लिए, जवाब के लिए इतने सालों की पढ़ाई है। अब सोचो इसी, और एक ही पाठ है, अशरीरी बनना है, यही पाठ है। अशरीरी बनेंगे तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे, बिंदु बनेंगे तभी तो बिंदु को याद कर सकेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में बड़े रमणीक ढंग से कहा, आप साकार में और वो साजन जो है साथी है वो निराकार है। अब साकार से निराकार तक पहुंचना है, वो निराकार तो साकार में फट से आ जाता है, और साकार को निराकार बनने में कितना समय चाहिए। सारा संगम तो बीत ही गया लगभग, अभी भी हम अपने आप से पूछे कि हम बने हैं पूरे देही अभिमानी, क्योंकि देही अभिमानी की क्वालिफिकेशंस क्या होती है वो भी समझना होता है। वो है तो कई फिर पूछते, बहन जी देही अभिमानी, अशरीरी, बिंदु स्वरूप, इसमें अंतर क्या है? तो वैसे देखा जाए है तो एक ही बात कि अपने को आत्मा अनुभव करना है। देही अभिमानी माना आत्मा हूं, देह के अंदर जो विराजमान है वो देही है, तो इस देह के अंदर विराजमान मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, और मालिक बन करके शरीर द्वारा पाठ बजाती हूं। तो जब कर्म में आते हैं तो देही अभिमानी स्थिति चाहिए, मैं आत्मा निश्चय करूं खुद को, दूसरों को भी आत्मा देखूं, क्योंकि जब आत्मा देखूंगी, आत्मा निश्चय करूंगी, तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, ये सारी हद की दीवारें खत्म हो जाएगी। पहला फायदा ये, अगर मुझे दिखाई देता है फलाना इस धर्म का है, फलाना इस जाति का है, फलाना इस रंग का है, फलाना ये अलग है, ये अलग है, हाँ, तो ये अलग अलग देखना माना ये भी देह अभिमान। इसलिए देही अभिमानी स्थिति मानस, हरे को आत्मा ही देखना सबसे पहली बात तो ये। और आत्मा कहाँ विराजमान है, भ्रकुटी के बीच में विराजमान है, तो सबको केवल मस्तक पर ही देखना, ये देही अभिमानी स्थिति है। क्योंकि मस्तक से नीचे आए ना, सारी हदें चालू हो जाएगी। मस्तक सबका एक जैसा है, सबका है ना मस्तक, भले किसी को बाल नहीं होंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा मस्तक, बाल है तो थोड़ा छोटा दिखेगा। हम कई बार बहनें होती है ना, वो विदेशी बहनों को देखते हैं, वो बाल यहाँ तक लाती है, वो आंखों पर भी ढक जाता है, तो हम उनको कहते हैं भाई जरा बाल तो सड़का, और तिलक लगाना है तो कैसे तिलक लगाएंगे, तो बाल सड़का हो नहीं तो तुम्हारा ये ललाट दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं सबको मस्तक में एक चमकता हुआ एक सितारा देखो, इसके नीचे आए तो कैसे हद्दी चालू हो जाएगी, सब कुछ अलग दिखाई देगा। फिर देख कहेंगे इसकी जो आंखें है ना, वो है ना बादामी आंखें हैं। आप साउथ आप जाइए चाइनी चाइना में, क्योंकि 70 देशों में मैं गई हूँ, चाइना भी गई मैं कल पिछले साल, तो वहां पर देखा ये आंखें इनकी इतनी छोटी छोटी छोटी, जापान में ऐसी ऐसी छोटी लंबी, हाँ तो कहाँ जाओ तो मलेशिया में जाओ इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो डांसर जो होते हैं ना साउथ इंडिया में भी जाओ इतनी आंखें बड़ी बड़ी करेंगे, तो आंखें किसकी छोटी किसकी मोटी। फिर विदेशों में पश्चिमी दुनिया में जाओ तो किसकी बिल्ली की आंखें, वो ये ना तो बहुत लाइट कलर की आंखें होती है रशिया की, रशिया में हम देखते हैं बिल्कुल वो नीली नीली आंखें, तो वो हमारी बहन रहती है ये क्या नाम है जो सेंट पीटर्सबर्ग में, संतोष, वो अपना अनुभव सुना रही थी कि एक दिन उसकी कुछ आंखों में तकलीफ थी, तो वो डॉक्टर के पास गई रशिया में, आंख के डॉक्टर के पास गई, तो आंख के डॉक्टर ने मशीन से आंखें देखी और उसको कहा थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, तो रुक गई। कहती भाई मशीन में उसकी उसकी वो आंखें हैं, और वो मशीन छोड़ करके डॉक्टर अंदर चला गया, और अंदर जा करके 15-20 लोगों को बुला के ले आया। तो फिर मैं हैरान हो गई, ये 15-20 लोग क्या करने आए, मेरी आंखें देखने आए। तो उनको वो डॉक्टर कहता है देखो ये इंडिया से आई है, इसकी जो आंखें है ना ये पुतलियां ये काली है, तो ये अलग है, रशिया वालों का अलग है उनकी तो अलग है, इनका अलग है, देखो ये इसमें इतना काला होते हुए भी सब स्पष्ट है, वहां तो फिर भी सफेद इसलिए स्पष्ट है, नीली आंखें बिल्ली की आंखें कैसे होती है एकदम। तो उनको विचित्र लगा कि हमारी जो हम लोगों की जो भारत वालों की जो आंखें है ना वो ब्लैक है काली, और उनकी काली नहीं होती है, तो वो भी अलग है, जहां जाओ वो अलग ही है। फिर और नीचे आओ, नाक देखो किसका मोटा है किसका पतला है, किसका चोंच वाला है किसका क्या, फिर होंठ देखो किसके कैसे किसके कैसे, किसके कान कैसे नाक कैसा, मतलब अंतर ही अंतर है, एक न मिले दूसरे से, चलो फिर भी वो सत्व स्थिति है। और नीचे आओ रजो तमो सब हो जाता है, तो बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते तो उससे भी ऊपर चले जाओ, जहाँ सबका मस्तक एक जैसा है, इसलिए बाबा पाँव भी नहीं छूने देते, पाँव तो सबसे नीचे है, वो तो मिट्टी है। भले शास्त्रों में ये बहुत ऊंची चीज मानी गई है भाई पाँव को छूना, पाँव को हाथ लगवाना, पाँव ही देखना, जैसे वो रामायण में दिखाते हैं कि लक्ष्मण ने कभी सीता के गले में देखा ही नहीं, तो उसे पूछा गया कहीं ये सीता का नेकलेस तो नहीं है, जब गहने देख रहे थे, गिरे हुए पड़े थे, तो लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो कभी उनके गले में देखा ही नहीं था। माना उनकी नजर सदा कहाँ रहती थी, पैरों में। अरे ये भावना बहुत ऊंची है, पर बाबा तो हमको पैरों को छूने भी नहीं देते थे। बाबा कहते थे पधारे को मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखो, ऊंची दृष्टि रखो, हीनता की भावना नहीं रखो, स्वमान भी हो पर नम्रता भी हो। नहीं तो मनुष्यों में क्या होता, अभिमान भी होता है और हीनता भी होती है, ये दोनों ही गलत है। हम बताते हैं ना कि देखो अज्ञान क्या है, हम दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त करते हैं। एक अज्ञान है अभिमान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नशा दिखाता है, सिर चढ़ा हुआ ही होता है उनका, मेरे जैसा कोई नहीं। तो संसार की उपलब्धियों का घमंड, ये एक अभिमान है। परंतु दूसरी ओर हीनता, ये भी देहाभिमान का ही रूप है। मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मेरे अंदर तो कोई कला ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, तो अपने प्रति हीन भावना रखना, ये भी अज्ञान है। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, ये स्वमान है। तो देही अभिमानी स्थिति माना वो स्वमान की स्थिति, जिसमें न हीनता है न अभिमान है। तो अभिमान और स्वमान दोनों में एक सूक्ष्म लकीर है। कई कहते कैसे पता चले कि ये स्वमान है या अभिमान है, लोगों ने स्वमान और अभिमान के अंतर को नहीं समझा तो स्वाभिमान कर दिया। स्वाभिमान, दोनों शब्दों को जोड़ करके स्वाभिमान कह दिया, मेरा स्वाभिमान ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। स्वमान क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता, ये मेरा स्वमान है। शांति रूपी स्वधर्म मेरा कोई भी छीन नहीं सकता, कोई उससे मुझे अलग नहीं कर सकता, यानी कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर मैं शांति नहीं दे सकती, ये मेरा स्वमान है। और अभिमान क्या है, एक सेकंड में शांति भंग, क्या समझा इसने, क्यों मुझे ऐसे कहा, मैं भी कोई कम हूं क्या, मुझे भी अपना स्वाभिमान है। तो वो स्वाभिमान है या अभिमान है, तो देखिए इसलिए बाबा स्वाभिमान कभी नहीं कहते, स्वमान और अभिमान। तो अभिमान देह के आधार पर है और स्वमान आत्मा के आधार पर है, जो आत्मा के मूल गुण है उनका मुझे मान है, और मैं किसी भी कीमत पर आत्मा के गुणों को नहीं बेच सकती, उस दो कौड़ी के पीछे मैं आत्मा के गुणों को नहीं बेच सकती। मेरी शांति सबसे प्रिय है मुझे, मेरा संतोष मुझे सबसे प्रिय है। तो ये अंतर को जो समझता है वो स्वमान में रह सकता है। इसने मुझे गाली दी, अब मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मुझे अपना स्वमान प्यारा है, पर ये स्वमान नहीं है। चलो गाली दी तो लगी कहाँ, गाली दी माना, और लगी माना क्या था, अभिमान था। तभी तो बाबा ने कहा ना, जहाँ अभिमान है वहां अपमान महसूस जरूर होगा, और जहां स्वमान है वहां अपमान महसूस होगा। चलो गाली दे रहा है, देने दो। हाँ, इसलिए वो कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहे, हाथी चले अपनी चाल। हाथी को परवाह है क्या कुत्तों की, ये कुत्ते मेरे पीछे पीछे भौंक रहे, बाबा डर लगता है कुछ करेंगे, क्या करेंगे, हाथी का और वो, पर वो तो अपना जोश दिखाएंगे ना कुत्ते। यहाँ भी हम लोग जाते हैं ना तो कुत्ते बहुत आते हैं, अभी गाड़ी में हम गए और कुत्ता बीच रास्ते में बैठा है, तो पाँव पाँव करेंगे, वो डर तो जाएगा कुत्ता, और थोड़ी जगह देगा और फिर पीछे पड़ेगा गाड़ी के, अभी गाड़ी के पीछे तुम कहाँ पड़ सकोगे, सोचेगा तू मेरे रास्ते में क्यों आए, ये मेरा रास्ता था, मैं मालिक हूँ इस रोड का। और पीछे भोंकता 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 होता है, आखिर क्या होगा, गाड़ी वाला रुक जाएगा क्या? एक तो उसको बचाया जी, क्या कहते हैं, गली के वो चोर, गली के कुत्ते होते हैं ना, वो मालिक होते हैं, दूसरे गली का कुत्ता वहाँ आ गया, उनको भी नहीं आने देते हैं। ऐसे है, बहुत देखा है, इस गली का जो कुत्ता होगा ना, दूसरे गली का है ना, भोंकते रहेंगे उस कुत्ते को भी, क्यों तुम मेरा मेरा मेरी एरिया है। तो देखो, पर हाथी तो मस्ती से चलता है, उसको तो कोई किसी की परवाह नहीं है। तो जो अभिमानी व्यक्ति होगा वो कुछ भी भले कहे, पर मुझे अपना सम्मान प्यारा है। मुझे याद आती है मम्मा की बात, उसमें बहुत छोटी थी तो मम्मा कुमारियों का क्लास करा रही थी, तो उस समय तो थोड़ी सी कुमारियां थी हम, ये मैं समझ रही 1964 की बात होगी। तो मम्मा कुमारियों का क्लास करा रही थी और एक कुमारी आई, छोटी थी, वो रोती रोती आई मम्मा के पास, मम्मा इसने मुझे बहुत गाली दी, मम्मा इसने मुझे ऐसे कहा, मम्मा चेहरा ऐसे गुस्से वाला बनाया मम्मा के आगे, जैसे मैं इसको उसको अभी मैं मार दूं। तो मम्मा उसको देखती रह गई और वो उसकी शिकायत करती रही। तो क्या हुआ, मम्मा ने उसको देखा तो मम्मा ने कहा कि देखो अभी तो वो है ही नहीं, और तुमने उसके सामने जो व्यवहार किया होगा वो तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी तो वैसा ही व्यवहार करे, मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब जैसे किसी को कंप्लेन करने आते हैं ना, तो कंप्लेन कैसे करते हैं, कोई तटस्थ होकर के कंप्लेन नहीं करते, वो शक्ल वैसी बना करके आते, जैसे कि अभी मैं उसको मारूं, पर मैं कैसे मारूं, इसलिए मम्मा को कहूंगी। लौकिक में भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब आपस में लड़ाई की बच्चों ने, तो एक ने दूसरे को मारा, फिर दूसरे ने पहले को मारा, अब वो पहला वाला मम्मी के पास आया, मम्मी मम्मी इसने मुझे मारा, अब पहले मम्मी पूछेगी पहले किसने मारा, अब मारा तो इसके ही बच्चे ने, पर दोष किसका निकालेगा बच्चा, दूसरे बच्चे का, मम्मी इसने मारा, पर पहले मैंने मारा ये कभी नहीं बताएगा, उसने तो तब मारा जब पहले इसने मारा। अब उसने शिकायत आकर के मम्मा को की, तो मम्मा ने उसको ही कहा, आपकी पहले आप मुझे ही जैसे डांट रही हो जैसे मैंने ही कुछ किया है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है हम उसको बोल देंगे, बता देंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बैठ गई, फिर वो दूसरी कुमारी जिसके साथ इसकी हुई थी वो आई, और जैसे वो आई तो मम्मा ने उसकी बड़ी तारीफ की, बहुत तारीफ की। अब इसका ये तो जल गई। जिसने उसकी शिकायत की उसी की ही तारीफ की मम्मा ने। तो फिर बाद में जब क्लास पूरा हुआ तो फिर दोनों को बुलाया मम्मा ने, मम्मा तो बुलाती थी, मम्मा ने दोनों को बुलाया, तो मम्मा ने पूछा बात क्या थी, और बात कसूर उसका ही था, किसने किसका, जिसने शिकायत की। तो देखो, पर वो अपनी भूल को छिपाना चाहती है, तो क्या करेगी, वो पहले के पहले मैं जाऊं, तो जो पहले जाएगा ना उसका पलरा भारी होगा, ऐसे समझते हैं। पर ये तो सब अभिमान की निशानी है, और जो आत्मा अपने स्वमान में है वो तो इन बातों में जाएगी नहीं। इसीलिए देही अभिमानी स्थिति का मतलब है कि मैं आत्मा अपने स्वमान में स्थित रह करके हर कर्म करूं, ताकि कोई भी परीक्षा आए, कोई भी मेरे सामने बात आए, मेरी स्थिति डावाडोल न हो। ये है स्वमान की स्थिति, या आत्म अभिमानी स्थिति, या देही अभिमानी स्थिति। लेकिन फिर जैसे अशरीरी अवस्था की बात आती है, ये तो फिर बाबा कहते बिल्कुल योग युक्त आत्मा, क्योंकि मैं कौन मेरा कौन, दादी जानकी हमेशा इस पर हर क्लास में सबसे पहले यही जोर देती है, तीन बार ओम शांति कहला करके कह करके फिर क्या कहेगी, मैं कौन मेरा कौन, अपने तरफ इशारा, एक उंगली ये एक उंगली वो ऊपर की ओर। एक बार डबल विदेशियों ने बड़ा अच्छा ड्रामा किया, कि दादी के पांच उंगलियां, एक ही उंगली की कमाल, लेकिन एक ही उंगली में पांच इशारे। तो मैं कौन, फिर मेरा कौन, फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो ये भी उंगली है ना, मुझे क्या करना है, ये तीसरी, ये भी ये ऐसे, ये अपने तरफ, ये ऊपर की तरफ स्थिर, पर मुझे क्या करना है, ये ऐसे, फिर चौथा, तुझे क्या करना है। तो कई बार मम्मा मतलब दादी जान की ऐसे ऐसे माना उसको इशारा भी दे रही है, मुझे क्या करना है, वो ऐसे गोल गोल घुमाएगी, फिर क्या करना है आपको, आंख साथ में दिखाएगी दीदी मम्मा ये सॉरी दादी जान की। तो और पांचवी बात भी कुछ बताई, मतलब कुछ ऐसा पांच बातें बताई दादी जानकी की, बड़ा अच्छा ड्रामा किया। तो है एक ही अंगुली की कमाल, पर पांचवी पॉजिटिव बातें, ऐसे नहीं हम एक को दिखाते मना तीन उंगली मेरे तरफ, उस रूप का नहीं था, पर पांचों ही पॉजिटिव चीजें इस उंगली की कमाल की। तो इसलिए क्या कहना है, तो बाब तो दादी हमेशा कहती है कि यही देखो, मैं अपने आप को देखूं। परंतु जब हम अशरीरी अवस्था की बात करते हैं तो मैं और मेरा, मैं खुद को देखती हूँ, मैं बाबा को देखती हूँ, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है, बाबा मेरा अशरीरी है, बाबा देह रहित है, मैं भी देह रहित हूँ आत्मा, और बिंदु बनकर बिंदु को याद करना, अशरीरी बनकर के अशरीरी से संबंध जोड़ना, अशरीरी से सर्व संबंध जोड़ना, ये वास्तव में योग की स्टेज है। जब हम कहते बाबा मेरे सर्व संबंध आपके साथ है, तो इसका मतलब क्या है, सर्व संबंध आपके साथ तो देह के साथ है क्या, देहधारियों के साथ तो एक ही संबंध होगा, देहधारी का देहधारी के साथ कितने संबंध होंगे, कितने होंगे, चलो दो बहनें दो किसी दूसरे परिवार में गई, दोनों बहनें भी है तो देरानी जेठानी भी बन गई, ऐसे होती ना, दो बहनें एक ही घर में भी आती है तो देरानी जेठानी भी बन गई और बहनें भी है, चलो ननंद भाभी भी कोई बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी है। तो अब ये सब दो दो चलो रिश्ते थोड़े बहुत हुए, परंतु सारे रिश्ते थोड़ी किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। माँ अलग होगी, बाप अलग होगा, फिर टीचर अलग होगा, चलो बाप और टीचर एक हो भी जाए पर गुरु तो अलग ही होगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ तो बाबा कहते सब संबंध मेरे साथ, तो कैसे सब संबंध जोड़ेंगे बाबा के साथ, कोई देह रूप थोड़ी है। तो आत्मा विदेही बन के विदेही से सर्व संबंध जोड़ सकती है, और भक्ति में भी जब हमने कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो उस समय देह समझ कर थोड़ी जोड़ा, देह समझ करके कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो हंसी में बताते ना कि त्वमेव माताश्च पिता कहा, तो अगर पति कहता है त्वमेव माताश्च पिता तो पत्नी को कहना चाहिए त्वमेव सास ससुर, फिर बच्चों को कहना चाहिए त्वमेव दादा दादी। अब ऐसे थोड़ी होता है, सभी का एक ही साथ एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो उस समय देह देह के धर्म देह के संबंध देह की सारी बातें हम भूल सकते हैं, लेकिन अज्ञानवश है क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। अभी बाबा ने जब आत्मा का ज्ञान दिया है और उससे ये हमें समझ दी है कि सबको आत्मा रूप में देखो, तो देह की हदें तो खत्म हो ही गई, पर साथ साथ देहधारियों के साथ भी जो लगाव है, जो खिंचाव है, जो झुकाव है, या जो मन मुटाव भी है, क्योंकि चार बातें हैं, लगाओ झुकाओ हा? क्या मन मुटाओ और जो भी कहो, न तो बाबा कहते हैं कि ये कुछ भी न हो, न फंसो पर न छोड़ो, न नया जोड़ो। तो नया जोड़ो भी कुछ नहीं, कहां फंसो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, पर क्या करो, देह के रिश्तों के साथ क्या करो, हाँ निभाओ। अब पत्नी को आप ये तो नहीं कहोगे कि ये मेरा भाई है, वो कहीं वैसे ही नाम बदनाम करते ब्रह्मा कुमारियों का, भाई बहन बनाती है। तो समाज के आगे तो आपको वो तो बताना पड़ेगा, पर अंतर में उसको आत्मा समझ रहे हैं और शिव बाबा दोनों का पिता है, तो अंतर में तो हम समझते हैं, लेकिन और दृष्टि में भी वही भावना हो, परंतु निभाना तो है ना, क्यों नहीं, मना थोड़ी है, छोड़ना तो है ही नहीं, प्रवृत्ति में तो रहना है। पर तो प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति कैसे रहेगी, जब सब संबंध एक के साथ होंगे, तो आत्मा के परमात्मा से संबंध है ये, इसमें देह की बात है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा से भी हमारा अलौकिक नाता है, लेकिन हाँ शिव बाबा इनके द्वारा ये सर्व संबंध का सुख आत्मा को देते हैं। पिता भी है, माँ भी है, हाँ बाबा कहते बड़ी माँ तो ये है, हाँ ये छोटी माँ है, क्योंकि मेल शरीर है इसीलिए स्त्री का चोला चाहिए, तो चलो ये माँ है। ये भी पॉइंट कब बाबा ने शुरू की बतानी, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तब तक तो मम्मा बाबा थे, यही अलौकिक माता पिता थे, लेकिन ये आपकी बड़ी माँ है, ये बाबा ने पॉइंट देनी कब शुरू की, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। क्योंकि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कई बहुत मोह के वश हुए, बहुत मोह, बहुत रोते रहे, बहुत रोते रहे, मम्मा चली गई, मम्मा चली गई, हाँ मम्मा चली गई, बस यही खाली कहते रहते थे। फिर तो इतनी बड़ी माया आ गई, मम्मा मेरे में आई, मम्मा तेरे में आई, मम्मा ये कह के गई, मम्मा कह के गई, क्योंकि संदेशियां तो बहुत थी, पर माया प्रवेश हो गई। और कैसे हाँ मम्मा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती थी, तो बाबा ने ये सब बंद करा दिया। मम्मा ने जन्म ले लिया है, मम्मा अभी कहीं भी आ नहीं सकती, मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर है, अभी एडवांस पार्टी का पार्ट शुरू हो रहा है, ये बाबा ने संदेश भेजा। तो मानो मम्मा लीडर बनी एडवांस पार्टी की, और फिर बड़ी माँ ये बन गई। ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरी ये शिव बाबा की वनी है, अलौकिक माँ है, तुमने इनके मुख से जन्म लिया है। पर फिर भी सर्व संबंध किसके साथ है, हाँ शिव बाबा के साथ है, बुद्धि ऊपर ही रहे। इसलिए फिर ब्रह्मा बाबा के साथ लटकने लगे कई, बस बाबा 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 बस, तो बाबा ने अपने से भी छुड़ाया। बाबा कहते थे बाबा के छह अव्यक्त होने के छह मास पहले बाबा ने बहुत बच्चों को वैराग्य दिलाया, बाबा ने खास ये जोर दिया, बच्चे ये तन तो पतित है, ये तो पुराना तन है, ये तन तो कभी भी छूट सकता है, पर तुम्हारा संबंध सब शिव बाबा के साथ है, हाँ इनमें नहीं बुद्धि जाए, ये तो निमित्त है केवल, कराने वाला वो बाबा है। वैसे भी जब बाबा की गोद में आते थे तो बाबा हमेशा पूछते थे बच्चे किसकी गोद में आयो, हाँ अगर कोई कहे ब्रह्मा बाबा की तो बाबा कहेंगे फेल, शिव बाबा की गोद में आयो ये तो निमित्त है, किसको देख रहे हो, अगर कहे ब्रह्मा बाबा को बाबा कहेंगे फेल, बाबा उनको स्वीकार ही नहीं करते थे, शिव बाबा को याद करके आओ, फोटो भी बाबा निकालने नहीं देते थे, ब्रह्मा बाबा नहीं निकालने देते थे, बाबा कहते थे बच्चे क्या निकालोगे फोटो, ये तो इनका ही निकलेगा, शिव बाबा का और इनकी आत्मा का तो निकलेगा ही नहीं, तो फोटो क्या निकालना है, बाबा इतने नष्टो मोहा बन गए। 68 में विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, बाबा साकार में थे यहाँ। तो मनोहर दादी सुनाती थी कि कैसे तब वो बॉम्बे में थी, विश्व किशोर भाव बाबा का नंबर वन बच्चा, एकदम राइट हैंड 100% आज्ञाकारी, और उसने उनको कुछ प्रॉब्लम थी शारीरिक, तो बॉम्बे गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और वहाँ ही शरीर छोड़ा। तो बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते हैं, एक रात उनको बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ, तो बाबा की भी नींद फिट गई, सारी रात बाबा शिव बाबा की याद में रह के उनको सकाश दी कि कैसे विश्व किशोर आराम से सोए, नींद नहीं आ रही थी, बहुत शरीर में तकलीफ थी, और सचमुच यहाँ आबू में बाबा थे, उनको सकाश दी और कैसे सचमुच उस समय उसको अच्छी नींद आई और बिल्कुल धीरे धीरे शांति से आत्मा ने शरीर छोड़ा अगले दिन। तो कहने का भाव है कि तो क्या हुआ, तो बाबा से पूछा, बाबा उनके बॉडी को यहाँ ले आए? बाबा ने कहा यहाँ ला के क्या करेंगे, आप वहीं संस्कार कर लो। बस बाबा ने इशारा दिया वहीं कर लो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है आबो में। तो वहाँ किया, लेकिन बॉडी को सेंटर पर लाए, मुझे याद है मैं भी थी उस समय गाम देवी सेंटर पर, बॉडी को लाए और वहाँ श्रृंगार किया, फोटो खूब फोटो लिए, डेड बॉडी के फोटो लिए, सोचा कि बाबा पूछेगा, बाबा को दिखाएंगे, क्योंकि बॉडी को तो मधुबन लेने गई, बाबा का कितना प्यार था, इतना प्यार जिगरी था। लेकिन जैसे शरीर छोड़ा, एक सेकंड में बाबा नष्ट हुआ हो गए, एक सेकंड में। और फिर जब क्या हुआ, मनोहर दादी बताती है कि मैं वो फोटोज लेकर सब बाबा के पास गई, बाबा के पास, बाबा झोपड़ी में बैठे थे, ये 68 फरवरी में उसने शरीर छोड़ा, तो फोटो लेके ये बाबा के पास आई और बाबा को कहती, बाबा मैं फोटो लाई हूँ। बाबा ने कहा किसका फोटो देखना है, मिट्टी का फोटो देखना है, बच्चे बाबा को जरूरत नहीं है। बिल्कुल बाबा ने स्वीकार ही नहीं किया, एक सेकंड में बाबा बिल्कुल न्यारे हो गए, फोटो भी नहीं देखना, इतने न्यारे हो गए, इतने न्यारे एक सेकंड। तो देखो बाबा न्यारे भी इतने, लेकिन प्यारे भी इतने। फिर उसके बाद तो बाबा ने कितनी बच्चे की तारीफ की मुरलियों में, हाँ ये बच्चा कैसा था, तो बिल्कुल छिपा हुआ हीरा था, यज्ञ का सारा कारोबार संभालता था। और जब गया बॉम्बे में, बॉम्बे से मतलब आबू से, उसने अपना सारा काम समेट लिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा कि अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो कुछ पीछे तकलीफ हो, सब कुछ हवाले। बाबा ने उसको कहा कि बच्चे अभी सब सौंप के जाओ, जैसे कि बाबा को पहले से ही आभास हो गया था। और वो आत्मा भी ऐसे ही गई, रमेश भाई खास आए थे, उनको लेके गए, एक फोटो भी है ना, देखा है आपने हिस्ट्री हॉल में एक फोटो है जिसमें बाबा खड़े हैं, रमेश भाई बॉम्बे के और विश्व किशोर, देखा है वो फोटो, वो बाबा का अंतिम फोटो है। टैक्सी तब गाड़ी नहीं थी, अपनी गाड़ियां नहीं थी, टैक्सी मंगाते थे या बसों में जाते थे, यहाँ से सामान लेकर के बस स्टैंड जाते थे, तब बैलगाड़ी थी, यहाँ से पीछे से बैलगाड़ी में सामान ले जाते थे, पैदल जाते थे बस स्टैंड तक। किसको अनुभव है, पुरानों का अनुभव है किसी को, यहाँ है किसी को नहीं जी, उषा बहन को है, हमको भी है। तो कैसे हम गए थे, तो क्या है कि तो बाबा ने सचमुच जैसे सब समाप्त करके गया था और फिर वापस तो आने का आया ही नहीं, परंतु पर बाबा ने इतना प्यार भी जताया और एक सेकंड में न्यारे भी हो गए। तो देखो कैसे ये बाबा की स्थिति थी, न्यारी और प्यारी स्थिति। और कुछ भी हो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा किसको देख रहे हो, किसको याद कर रहे हो। तो बाबा ने कैसे अपनी अशरीरी अवस्था बनाई, एक सेकंड में फरिश्ते हो गए। बाबा के देह त्याग से 6 मास पहले से की जो मुरलियां हैं उसमें बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है। ये शांति स्तंभ जो नाम पड़ा है ना ये बाबा की मुरलियों में आया हुआ है। बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, जैसे एक स्तंभ होता है चारों ओर अपना प्रकाश देता है, तुम्हें शांति स्तंभ बन करके सबको शांति का संदेश देना है, ज्ञान स्तंभ बनना है, पवित्रता स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है। तो ज्ञान स्तंभ बन के क्या करो, शक्ति स्तंभ बन के क्या करो, वो बाबा की सब मुरलियों में और वही सारा चारों ओर शांति स्तंभ पर लिखा गया है जो शिव परमात्मा के मावा के ब्रह्मा द्वारा थे। तो ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त हो गए, धीरे धीरे देह से न्यारे होते गए होते गए होते गए और अंत में आप देखते हैं कितना सुंदर अनुभव, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई, आत्मा पंछी उड़ गई, बैठे बैठे शिव बाबा की याद में एक सेकंड में। दादी जी सामने थे, दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था, बाबा ने दृष्टि दादी जी को दी, बस दृष्टि और हाथ, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई, बिल्कुल एक पता भी नहीं चला, जैसे मक्खन से बाल। दादी जी को पता नहीं चला कि क्या हो गया, हाथ कमजोर पड़ गए, यानी ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया दादी को। फिर तो डॉक्टर ने आके डिक्लेयर किया कि ये तो गए, यानी कहने का भाव है कि बाबा को जो अभ्यास था अशरीरी स्थिति का, 2-2 बजे उठ करके बाबा अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते थे, न्यारे रहते थे। अब ये अभ्यास हम कहाँ तक कर पाते हैं ये अपने को देखना है। मैं देश से बिल्कुल न्यारी हूँ, ये तो बाबा कई बार कहते पुरानी जुत्ती है, चतिया भी लगानी है, चतिया लगा के ये पहनना है, कोई ये न सोचे पुरानी जुत्ती है इसलिए जल्दी शरीर छोड़ूं, वही बाबा कहते थे भी, हाँ ये भी बहुत गलत बात है, पाप है बड़ा, अगर कोई सुसाइड करते हैं ये बड़ा पाप है, क्योंकि आत्मा अगर भटकेगी तो कितना उसको दुख होगा, कितना बड़ा पाप किया। ऐसे नहीं कि हमेशा भटकती, हो सकता है वही उसका कारण बनता हो, लेकिन ये शरीर बहुत अमूल्य है। कई बार बाबा कहते चतिया लगा के भी इसको चलाओ, दूसरा शरीर लेंगे फिर तो कहाँ टाइम मिलेगा बाबा को याद करने का, बुद्धि इतनी विकसित हो जो याद कर सको समझ सको, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। भले आयु लंबी हो हर्जा नहीं, भले बेड पर पड़े रहो पर बाबा को तो कम से कम याद करते रहो, जल्दी शरीर छोड़ो ये भी कभी नहीं सोचो। वैराग्य इस रूप से नहीं आया, ये भी हद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य भले आए, मेरा तो सब एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो अशरीरी स्थिति माना मुझे और कोई याद ना आए, और उसके लिए मम्मा कहा करते थे कि अशरीरी स्थिति क्या होती है, मम्मा से किसी ने पूछा तो मम्मा ने कहा कि अशरीरी स्थिति अर्थात हर वक्त अपनी परीक्षा लो, इस समय अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो मुझे कौन याद आता है, कोई देहधारी तो याद नहीं आता। अगर देहधारी याद आया वो 1 सेकंड की परीक्षा में फेल, पर उसके लिए क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि एवर रेडी बनना है और उसके लिए अचानक होगा, पेपर का की तारीख नहीं बताई जाएगी। तो अचानक के लिए भी तैयार, एवर रेडी भी रहना, बहुत काल का अभ्यास और पेपर 1 सेकंड का, ये है अशरीरी अवस्था। ठीक है, चलो ओम शांति। 12:15 बज गया, अभी आप लोगों को यहाँ तरबूज मिलने वाला है, यहाँ नहीं होगा, आपको किचन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से उठ करके आप सभी किचन में जाएंगे, 1 मिनट हम बैठते हैं, उसके बाद आप सभी किचन में डाइनिंग हॉल में जाएंगे, वहाँ आप तरबूज खा करके आएंगे। नीचे के डाइनिंग हॉल में आप सबके लिए भी है। वैसे तो पता नहीं औरों के लिए है या नहीं, पर आपके लिए तो है, भट्टी वालों के लिए। कल बहुत तरबूज आए हैं, हम पूछते हैं फ्रूट वाली से कहाँ से आए हैं, कहते वो तो गुप्त भेजते हैं ना लोग, पता थोड़ी पड़ता कहाँ से आया, बस आ जाता है हम खाते हैं क्योंकि बाबा तो कहीं ना कहीं से भेज ही देता है। तरबूज आते हैं, खरबूज आते हैं, अभी आम की सीजन थोड़ी इस साल कम आने, तो इतने आम खाना है मुश्किल, इतने आम मिलते हैं। पहले बॉम्बे से आएंगे, फिर उसके बाद ये कहाँ नॉर्थ से आते हैं, यूपी से आते हैं, सब तरफ से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वैरायटी आम यहाँ होते हैं। लेकिन ये सब क्योंकि बाबा के बच्चे इतना प्यार करते, सबसे पहले मधुबन में भेजते हैं। तो आप सबके लिए पूरा कल एक ट्रक भर के आया, ट्रक ऐसे नहीं 8-10-20 पूरा ट्रक में तो पता नहीं कितने 500 होंगे, 500 से भी ऊपर, तो यहाँ आया है, रोज यही खाएंगे। चलो 2 मिनट, 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, 1 सेकंड में बन जाओ शरीर। चलो ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शिलू बहन जी का, बाबा मम्मा की बातें, मनोहर दादी की बातें, कहाँ कहाँ की कितनी हिस्ट्री इसमें आ भी गई, और अशरीरी बंदे की आत्मिक अवस्था बनाने की, स्थिति बनाने की बातें। अभी आत्मा बन कर जाना और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कम से कम देखना, माना छोटे से छोटी आत्मा को ही देखना।